बोली सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतों की। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा और गुरुजनों की असीम कृपा से इस पवित्र स्थल में हम लोग विचार कर रहे हैं कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद में। जमराज आचार्य है नचिकेता को माध्यम बना करके सभी साधकों के लिए उपदेश किया जा रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण शिष्य अर्जुन को माध्यम बना करके सभी मुमुक्षु के लिए उपदेश करते हैं, ठीक इसी प्रकार यहां पर समझना है। जमराज नचिकेता का संवाद संवाद का तात्पर्य केवल संवाद में नहीं होता है, संवाद का तात्पर्य अलग होता है। तो यहां पर नचिकेता के लिए उपदेश करते हैं, ये जो आत्म तत्व इसका स्वरूप धूम रहित अग्नि की तरह है। 13वां मंत्र में कल विचार चल रहा था, द्वितीय अध्याय की प्रथम बल्ली, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा अधुमक। जब काष्ठ शुष्क हो जाता है, जलीय अंश नहीं रहता हो, उससे धूम रहित अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर यह समझना है हम लोगों को, जब बुद्धि रूपी काष्ठ समस्त वासना रूपी जल से रहित हो जाएगा, किसी प्रकार की वासना ना हो बुद्धि में, जैसे माचिस में अग्नि तो है, उस अग्नि से काम नहीं होता है, भोजन नहीं बनता है, उसको अभिव्यक्त करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है, बुद्धि में भी है पहले से ही, लेकिन उस परमात्मा से नहीं होगा, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, दुख की निवृत्ति नहीं होगी। भगवान राम का अवतार से पहले ही परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा रावण को नहीं मार पाए, तो रावण को मानना हो तो अवतार लेना पड़ेगा, धनुष बाण भी उठाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अज्ञान रूपी रावण को मानना है तो शुद्ध ज्ञान रूपी परमात्मा को अभिव्यक्त होना होगा बुद्धि में, और बुद्धि में उस परमात्मा तक अभिव्यक्त होंगे जब बुद्धि अत्यंत शुद्ध हो जाएगी, किसी प्रकार का वासना रूपी जल ना हो, ब्रह्मलोक पर्यंत कोई भी वासना ना हो, तब उस बुद्धि को शुष्क काष्ठ की तरह समझना होगा। इसलिए जब बुद्धि इस प्रकार की हो जाएगी शुष्क काष्ठ की तरह, तब गुरु का उपदेश श्रवण करके विचार करके परमात्मा रूपी ज्ञान वो अभिव्यक्त हो जाएगा। वो परमात्मा तत्व पहले से भी है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो काल परिच्छिन्नता नहीं है, जो पहले हो और आगे नहीं रहेगा, और पहले ना हो और अभी हो, उसको कहते हैं काल परिच्छिन्न। तो काल परिच्छिन्नता शरीर में है, आत्मा में नहीं है। इसलिए हे नचिकेता, तुम आत्मा को काल से अपरिच्छिन्न अर्थात शरीर से भिन्न है। काल परिच्छिन्नता शरीर में है, आत्मा में नहीं है। ये 13वां मंत्र में जमराज जी ने बताया नचिकेता को। जब ऐसा आत्म तत्व है, फिर ये भ्रमण क्यों करता रहता है, कभी मनुष्य में, कभी देवता में, कभी पशु पक्षी में, ऐसा क्यों? तो आगे के लिए बोलते हैं 14वां मंत्र में। तो कहते हैं आत्मा ही ऐसा तत्व है, जैसा संकल्प करता है वो ऐसा ही आत्मा मालूम पड़ता है। जैसे वर्तमान में आप देख लो तो सत्संग के साथ आप संबंध बना लिया, सत्संग, तो आप हो गए सत्संगी, आप हो गए सत्संगी। और घर के साथ कोई कार्य दूसरा आ गया, ऑफिस का हो, घर का हो, जो भी हो, तो वहां पर जो आप ऑफिसर बन गए। इसी बगैर अंतकरण में कामना हुई तो कामना रूपी संकल्प को संकल्प के साथ आपने बना लिया, तो आप हो गए कामी, आप कामी हो गए। अभी सत्संगी है आप, कामना हो गए तब कामी हो गए। क्रोध रूपी संकल्प के साथ बना लिया तो आप क्रोधी हो गए। ठीक इसी प्रकार जिस शरीर में जाता है, तो पशु शरीर में गया तो पशु हो गया, देवता शरीर में गया तो देवता हो गया, इसी प्रकार ब्रह्मा जी पर्यंत। तो जहां पर जाता है वही संबंध बना लेता है, और जैसा संबंध बना लिया तद्रूप होकर के ये आत्मा मालूम पड़ता है। इसलिए यहां पर जमराज एक दृष्टांत बताते हैं, बहुत बढ़िया दृष्टांत बता रहे हैं 14वां श्लोक में, जल का दृष्टांत। जैसे जल तो जल ही होता है, वृष्टि से पहले जो आकाशस्थ जल, आकाश में जल है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। लेकिन वही जल जब पर्वत में गिरा तो वृष्टि के माध्यम से, तो गंगा जी की नदी में गिर गया तो उसका नाम गंगा हो गया, तो नाली में गिर गया तो उसका नाम हो गया नली, नाला हो गया। देखो तो पहले उसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है, तो जिसके साथ उसका संबंध हो गया तद्रूप होकर के जल का नाम हो जाता है। ये 14वां मंत्र में बता रहे हैं। देखो, यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यंस तान एवानुद तान एवानुविधावति। जैसा दृष्टांत है, कहते हैं बहुत ऊंची जगह हो, ऊंची जगह हो, दुर्ग है ऊंची जगह, तो ऊंची जगह में जो है जल गिरा, वृष्टम जलम, और जल का स्वभाव होता है नीचे की ओर जाना, जल का स्वभाव है द्रवत्व, उसमें द्रवत्व धर्म है, इसलिए वो नीचे आ जाता है। तो जैसी नाली मिली, जगह मिली, वो नीचे आ गया, और नीचे आकर के उसका जो संबंध बन गया तो उसका नाम अलग हो गया, गंगा जी हो गई, जमुना हो गई, नर्मदा हो गई। और नाली का जैसा आकार है ऐसा रूप भी हो जाता है उसका। तो नदी तो नाली का नाम है, वो धारा का नाम है, लेकिन उस धारा के साथ संबंधित हो गया तो उसका नाम हो गया, रूप हो गया। तो ऐसा आत्म तत्व भी है, दृष्टांत आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व भी ऐसा है। तो शरीर रूपी संकल्प किया तो उस संकल्प के साथ तदाकार हो गया, तो मनुष्य शरीर वाला हो गया। ये बोलते हैं देखो, एवं धर्मान पृथक पंचस, धर्म का अर्थ आत्मा से अतिरिक्त जितने भी है शरीर आदि, तो उसके साथ क्या कर लिया, संबंध बना लिया, पश्चिम संबंध बना लिया। तो संबंध बना लिया तो तद्रूप हो गया, वो शरीरधारी हो गया। ये अनादिकाल से, अनादिकाल से इस शरीर रूपी जो रथ चल रहा है, जीवन रूपी रथ चल रहा है, कब से है नहीं बोल सकते हो। तो ऐसा समझ लीजिए कि शरीर रूपी रथ जो है ना, जीवन रूपी रथ, इसके दो पहिया, दो पहिया, दो चक्र है, एक सुख रूपी चक्र और दूसरा होता है दुख रूपी चक्र। समझ लो इस बात को, एक चक्र हो गया सुख, दूसरा चक्र हो गया दुख, और एक चक्र में छह छह अरे होते, अरे ऐसे लिख होता है ना आरा, तो छह है देखो आरा, तो कैसे छह हो गए, तो समझ लो पूर्व धर्मा धर्म के कारण, पूर्व पाप पुण्य के कारण आपको वस्तु मिलती है। तो दो प्रकार के कर्म है, एक पुण्य हो गया और एक हो गया पाप। तो पुण्य कर्म के कारण आपको मिलेगी सामग्री, तो अपने चाहने मित्र चाहने मात्र से नहीं मिलती है। पुण्य कर्म यदि फल दे रहा है तो आपको सुख मिलेगा, ऐसी वस्तु मिलेगी। तो पूर्व अदृष्ट पुण्य के कारण आपको अनुकूल वस्तु मिल गई, तो एक आरा हो गया, देखो एक आरा हो गया। दूसरा आरा क्या है कि उसका भोग करते हो, तो मनपसंद लड्डू मिल गया, एक आरा हो गया। तो मिलने का हेतु पुण्य है, पूर्व अदृष्ट पुण्य के कारण आपको लड्डू मिल गया, एक आरा हो गया। दूसरा आरा है उसका भोग, उसका भोग खाते हैं, खाते मुंह में डालते हो, तो ये भोग हो गया दूसरा आरा, है ना, अनुभव कर लो भाई, इसको अनुभव करना पड़ता है। तो लड्डू मिल रहा है मनपसंद, तो समझ लो कि ये हमारा पुण्य कर्म है, तो पुण्य कर्म से आपको लड्डू मिल गया। तो लड्डू का जो भोग हो गया ये हो गया दूसरा आरा, और भोग क्या करेगा, वो वासना को पैदा करेगा। हाँ बहुत बढ़िया लड्डू है, ऐसा लड्डू तो हमने कभी खाया नहीं। तो ये जो वासना होती है ना, ये वासना ही प्रतिबंधक है आगे शरीर के लिए। तो नूतन शरीर प्राप्ति के लिए वासना ही प्रतिबंधक है, दूसरा कोई प्रतिबंधक नहीं है। नहीं तो ज्ञानी भी लड्डू खाता है, अज्ञानी भी लड्डू खाता है। तो दाल में नमक कम है तो ज्ञानी नमक तो मांगेगा कि नहीं मांगे। अब बोले नमक मांग रहे तो क्या ज्ञानी है, तो ऐसा नहीं, नमक तो मांगेगा लेकिन भोग करते समय भी यदि वासना न हो तो भोग प्रतिबंधक नहीं होता है। गुरुपाद भगवान ने बहुत विचार किया मांडवीय कारी का, एक भोक्ता होता है दूसरा भोग होता है, तो भोक्ता तो तीनों अवस्था में है, जागृत में ये भोक्ता है, स्वप्न में भी भोक्ता है, सुषुप्ति में भी भोक्ता है, और भोग भी तीन हो गए, जागृत का भोग हो गया स्थूल, स्वप्न का हो गया सूक्ष्म, और सुषुप्ति का हो गया कारण आनंद। लेकिन ज्ञान तो बहुत आगे की बात है, तो ज्ञान से पहले भी यदि आपको ये अनुभव हो जावे, भोक्ता तो एक ही है तीनों अवस्था में, और भोग तो भोग ही है बस, चाहे गर्म रोटी मिले चाहे ठंडी रोटी मिले, भोग तो भोग ही होता है, अनुभव में करते जाओ इसको। वेदांत को हमेशा अनुभव करना है, केवल सुन करके दूसरों को सुनाना ये वेदांत नहीं है, उसको अनुभव करना होगा कि देखो एक शरीर में आप अनुभव कर लो कि तीनों अवस्था में तो भोक्ता एक ही होता है, अनेक भोक्ता नहीं होते हैं, जो आप जागृत में भोग कर रहे हो वही आप सपन में करते हो, और सुषुप्ति में जाते तो आप वही होते हैं, तो एक भोक्ता हो गया, और भोग भी एक ही होता है। ये तो हमारी भ्रांति है कि स्थूल है सूक्ष्म है कारण है, ऐसा कुछ नहीं, तो भोक्ता एक है और भोग एक है, तो जैसा इस शरीर में हुआ इसी प्रकार पूरे शरीर में एक ही भोक्ता है और एक ही भोग है, तीसरी कोटि कोई नहीं है संसार, एक ज्ञान से पहले की बात बोल रहे। तो इस शरीर में जैसे भोक्ता और भोग हुआ इसी प्रकार शरीर शरीर में तो एक ही भोक्ता है एक ही भोग है, तो ऐसा यदि अनुभव हो जाएंगे तो भोग करते समय भी वासना नहीं होगी, जो भी थाली में डाल दिया खा लिया बस, चाहे सुखी हो चाहे जो घी लगा हुआ हो, अन्न तो नहीं है इसलिए भिक्षा करते हैं, देखो बोध महात्मा जो भी थाली में डाल दिया पैस खिचड़ी करके मिला दिया सब, है ना, फिर जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हो करके डाल दिया अंदर बेसन और अग्नि में, तो बेसन और अग्नि एक ही है ये विचार करना है, शरीर सभी सभी शरीर में जो महात्मा को भोजन करा रहे हो ना, बेसन और अग्नि जो भोक्ता है ना उसी को मैं डाल रहा हूं, महात्मा को नहीं डाल रहा, यही बुद्धि होनी चाहिए ध्यान में रखो, है ना, तो वहां पर भेद नहीं होता है कि ये शिष्य है गुरु है, उपासना में भेद जिससे भोजन कराते उसमें भेद नहीं होता है, ये तो शरीर में भेद है, लेकिन दोनों में शिष्य में गुरु में जो भोक्ता है ना वो एक ही है, दो नहीं है, कौन भोक्ता है बेसन और अग्नि। तो देखो एक भोक्ता हो गया दूसरा भोग हो गया, तो इस प्रकार बुद्धि यदि हो जाएंगे हो जाएगी तो वासना नहीं होगी, देखो भोग करते समय भी संस्कार नहीं पड़ेगा कि लड्डू बहुत बढ़िया है, ये तो भोग होने मात्र से प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन अविवेक के कारण जो भोग से वासना जो हो जाते है ना वो होता है प्रतिबंधक होता है। तो दो आरे हो गए देखो, तो पूर्व अदृष्ट पुण्य के कारण अनुकूल वस्तु की प्राप्ति एक आरा हो गया एक चक्र का, और दूसरा आरा क्या है भोग खाते डालते अंदर, और तीसरा आरा है अविवेक के कारण भोग से वासना हो जाती है, ये तीसरा आरा हो गया है ना, ये वास्तविकता है अनुभव करना, और वासना क्या करके ना जो संस्कार पड़ा है बहुत बढ़िया लड्डू है मतलब बहुत बढ़िया गाड़ी में बैठे हो दूसरे की गाड़ी में तो अच्छा लगता है, फिर बाद में जो वासना क्या करेगी ना प्रकट हो जाएगी, प्रकट प्रकट हो जाएगी है ना, कि उद्भूत वासना के कारण, उद्भूत वासना के कारण इच्छा आपको हो जाएगी है ना। गाड़ी का नाम सुन करके फिर गाड़ी को प्राप्त करने के लिए है ना, जो है खरीदने के लिए आपकी इच्छा हो जाएगी, उद्बोध हो जाएगी। तो कितने आ रहे हो गए भैया, चार हो गए ना, चार हो गए। तो चार हो गए तो उसके बाद क्या हो गए, पांचवी, पांचवी जो है ना प्रवृत्ति हो जाएगी, जुटाओ उसको कैसे भी करके। तो पैसा कैसे आएगा, फिर जो जुटाना पड़ेगा, तो उसको प्राप्त करने के लिए इच्छा हो जाएगी। तो कितने हो गए, पांच हो गए ना, और एक आ रहा जो आप कर्म करोगे ना, कर्म तो कर्म में दो प्रकार का होगा, एक शास्त्रीय होगा नहीं तो अशास्त्रीय होगा, तीसरा कोई कर्म तो है ही नहीं। तो शास्त्रीय कर्म करोगे तो फिर पुण्य होगा, पुण्य होगा ना शास्त्रीय कर्म करोगे, तो फिर पुण्य जो हुआ तो छह हो गए करें, फिर पुण्य के कारण फिर बाद में फिर आपको वस्तु मिल जाएगी, अनुकूल वस्तु मिल जाएगी। ये चक्र हो गए, देखो चक्र यही जीवन का चक्र। तो एक चक्र हो गया अनुकूल पुण्य का, और दूसरा चक्र क्या होगा, दुख का होगा, पाप का हो जाएगा। पाप में भी ऐसे ही समझना आपको, तो पूर्व अदृष्ट पाप के कारण आपको प्रतिकूल प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी है ना। आप मान लीजिए जीवन भर कटु शब्द बोल रहे हो, जीवन भर कटु शब्द बोल रहे हैं ना, तो ऐसा समय आएगा, ऐसा आपको शरीर मिलेगा, तो जहां भी जाओगे ना आपको कटु शब्द बोलने वाले ही मिलेंगे है ना। ये महापुरुषों का अनुभव है। तो जिस इंद्रिय से हम जो कर्म किए हैं, दोष किए हैं ना, तो ऐसी इंद्रिया ही आपको जो है ना दुख के लिए हेतु बनेगी, ये सिद्धांत है, देख महापुरुष का कहना है। यदि आप वाणी से आप किसी को कष्ट दिए हो ना, यही वाणी ही आपको दुख का हेतु बन जाएगी। जीवन भर कटु बोले हैं तो ऐसी जोनी मिलेगी, ऐसा परिवार मिलेगा ना, तो पत्नी भी कटु बोलने वाली होगी फिर है ना, और जो बच्चा जो पैदा होगा ना वो भी कर्कश बोलने वाला होगा, कटु बोलेगा। ऐसा आपको जो है ना ये ससुराल में मिलेगा फिर ऐसा ही है ना। तो ऐसा हो जाता है, प्रतिकूल हो गया, देखो प्रतिकूल। तो पूर्व अदृष्ट पाप के कारण प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति हो गई, उसके बाद प्रतिकूल वस्तु के प्राप्ति होने पर भोग होगा, भोग तो करोगे ही, भूख लगी है तो जैसा भी तो खाना तो पड़ेगा ही है ना। तो भोग हो जाएगा, अभी भोग होने पर क्या होगा, पहले राग हुआ था, देखो अनुकूल वस्तु में राग हुआ था, अब प्रतिकूल वस्तु में क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कोई वस्तु का में द्वेष होगा, और वस्तु जो देने वाला है ना व्यक्ति उससे भी द्वेष हो जाएगा, देने वाले से भी हो जाएगा, इनको सम्मान करना नहीं आता है। तो ऐसा बोलेगा वो, फिर जो द्वेष हो गया, तो द्वेष हो गया तो फिर उसका कैसे अनिष्ट हो गई, ये कर्म करोगे तो फिर पाप हो जाएगा, पाप होने पर फिर जो है प्रतिकूल वस्तु की ये होता है। तो ये पापात्मक चक्र हो गया, और दूसरा हो गया द्वेषात्मक चक्र हो गया, एक अनुकूल चक्र और दूसरा होता है प्रतिकूल चक्र है ना। तो ऐसा चक्र के साथ जो संबंध बना लेगा है ना, जिस रथ में शरीर रूपी रथ में दो चक्र लगे हैं, तो उस शरीर के साथ जिस संबंध बना लिया तो वो भी शरीर वाला हो गया। ये नचिकेता के लिए बोल रहे हैं, देखो चौदहवा मंत्र में धर्मान पृथक पश्यंस तान एव अनुविधावती, ये देखो अनु मतलब पश्चात, और शरीर के साथ संबंध नहीं बनेगा तो शरीरधारी नहीं होगा आत्मा। शरीरधारी तो आत्मा नहीं होता है, लेकिन संबंध बना लेता है संबंध। तो विचार करने पर आत्मा का संबंध नहीं बनता है। आत्मा का संबंध कैसे बनेगा? भाई मान लो चलचित्र के पर्दे में चित्र दिखता है, चाहे अग्नि दिखे चाहे जल दिखे बाढ़, लेकिन ना अग्नि का संबंध होता है ना जो है जल का संबंध होता है। भाई संबंध हो जाएगा तो पर्दा ही जल जाएगा, फिर संबंध नहीं बनता है। इसलिए अगर आत्मा में बड़ा भी लक्षण है, आत्मा का संबंध वास्तविक नहीं बनता है। और भगवान भाष्यकार ने उदाहरण दिया है मांडुके कारिका में, जैसे पक्षी हो, पक्षी बहुत उड़ती है, कभी पूर्व दिशा में कभी पश्चिम दिशा में, आकाश के साथ वास्तविक संबंध पक्षी का नहीं होता है। दूसरा एक दृष्टांत दिया मछली का, बहुत बड़ी मछली हो नदी में, कभी उस किनारे में जाती है और कभी इस किनारे में है, है ना, एक क्षण में उस किनारे में है, दूसरे क्षण में इस किनारे में है, वो मछली किस किनारे की होगी? किसी भी किनारे की नहीं ना है वो, है ना, एक किनारे के हो जाएगी तो संबंध बन गया ना फिर। इसमें अगर आत्मा भी किसी भी किनारे का नहीं है तो कहाँ हुआ बोलो? तो पूर्व शरीर जो मिला था उस शरीर का कहाँ हुआ? आत्मा छोड़ दिया ना। इसी में अगर महात्मा यदि हो तो पूर्व शरीर कहाँ रहा? छोड़ दिया परिवार को, है ना। अब आश्रम में आ गया तो आश्रम में संबंध बना लिया तब भी फंस जाएगा वो, है ना। इस समय आएगा तो इसको भी छोड़ देगा है कि नहीं? इसलिए जिस शरीर में आप हो इस शरीर भी कहाँ रहेगा? इस शरीर का छोड़ देगा, है ना। इसलिए आत्मा भी किसी का नहीं होता है, बड़ा विलक्षण है कि नहीं? क्योंकि आत्मा तत्व ही ऐसा है ना। तो इसी प्रकार संत भी होते हैं, देखो संत भी होते हैं, तो उस असंग आत्म तत्व का साक्षात्कार जिसको हो गया, असंग ही अयम पुरुष, उस असंग आत्म तत्व का साक्षात्कार जिसको हो गया ना, ऐसा जो संत है वो भी संत किसी का नहीं होगा ना, कहाँ होगा किसी का, है ना। इसलिए तो सच्चा स्नेह सच्चा प्रेम तो कहाँ पर मिलता है? एक तो परमात्मा में मिलता है और दूसरा सच्चा संत में मिलता है, बाकी में कहीं मिलेगा नहीं। देखो क्यों? क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा है ना। किसका? जिसको असंग आत्मा का साक्षात्कार हुआ ऐसा संत की बात कह रहे हैं, हो गया ना। इसलिए ऐसा दृष्टांत समझ लो, दर्पण का भाई दृष्टांत समझ लो। तो एक दर्पण में कोई मुख को देख करके सुखी होता है, मान लीजिए अभी चेहरा अभी तक तो ठीक है ना। और दूसरा है मान लो कि चेहरा ठीक नहीं है, बाल वगैरह सब पक गया, दांत गिर रहा है और दुखी हो जाता है ना। और भाई दर्पण से पूछे तुम किसके हो, सुखी वाले मुख के हो कि दुखी वाले मुख के हो? दर्पण बोलेगा मैं किसी का है ही नहीं, ना सुखी वाले मुख का संबंध है ना दुखी वाले मुख का मुख से संबंध है। इसलिए संतरूपी दर्पण भी किसी के नहीं होते, कहाँ होते हैं? इसलिए तो भक्तों को भ्रांति हो जाती है, ध्यान में रखो। भ्रांति क्या हो जाती कि स्वामी जी हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, गुरु जी जो है ना हमसे ज्यादा प्रेम करते, क्यों इतने में सेवा करता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं समझना है, भ्रांति हो जाती है भाई। किसी के साथ ज्यादा प्रेम हो और किसी के साथ कम प्रेम हो तो प्रेम कहाँ हुआ फिर? आत्मा का स्वरूप कैसा है? निरतिश्य प्रेम। तो निरतिश्य प्रेम यदि हो जाएगा तो फिर किसी में कम और किसी में ज्यादा कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसी प्रकार आत्मा तत्व भी वो किसी शरीर का होता नहीं है, लेकिन संबंध बना लिया ना, और संबंध खुद ही बनाता है। आत्मा ही समझ लेता है कि मैं बंधन में हूं, तो बंधन की कल्पना कर लेता है। गोस्वामी जी ने लिखते वहां पर जैसे मरकट का दृष्टांत देते हैं भाई, दूसरा एक दृष्टांत देते पक्षी का, हाँ ना, कीरो मरकट है ना, क्या है, हाँ बंधो कीरो मरकट की नाही। तो बंधन वास्तविक नहीं होता है ना, जैसे कोई अरका लगा दिए और उसमें पक्षी बैठ जाती है और वो क्या, वो चरका जो है ना घूम जाती है, तो घूम जाती है तो पक्षी उसको पकड़ लेती है, वो समझती है कि मैं इसको छोड़ दूं तो मैं गिर जाऊंगा तो थोड़ी गिर जाएगी वो नहीं पकड़ा है उसको। दृष्टांत दूसरा दृष्टांत क्या दिया, मरकट बंदर का दृष्टांत दिया अभी, तो चने के लोभ से जो है ना वो हाथ प्रवेश करता है अंदर लोटे के अंदर, और लोटे का जो मुंह छोटा रहता है, बड़ा नहीं रहता है, उसी प्रकार का। और जो है जो चने को पकड़ता है और उसको छोड़ता नहीं है, और जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक हाथ बाहर आएगा नहीं, वो समझ ले चना मेरे को पकड़ लिया। हाँ, तो अपने मूल स्वभाव में उसको भूल जाता है चने के लोभ के कारण वो मूल स्वभाव विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है, और समझ लेता है कि जो है मेरे को ये पकड़ लिया, पकड़ा नहीं, ना ये पकड़ा है ना वो पकड़ा है, छोड़ देने पर हाँ वो तो मुक्ति हो जाएगा, लेकिन छोड़ता नहीं इसलिए कि लोभ है। इसलिए अगर हमको लोभ किसका है, ये शरीर का जो धर्म है ना सुख, शरीर से जो रस मिल रहा है ना, वैसे ही सुख जो रस मिल रहा है, इसके लोभ से जो वास्तविक जो सुख है ना उसको भूल जाता है। इसलिए ना आत्मा पकड़ा है ना शरीर को, है ना, ना शरीर पकड़ा है आत्मा को, शरीर कैसे पकड़ेगा, क्योंकि शरीर वगैरह सब मिथ्या वस्तु है, मिथ्या वस्तु सत्य को कैसे पकड़ेगी, लेकिन कल्पना है, कल्पना है ना, तो कल्पना कर लिया तो मनुष्य बन गया, कल्पना कर लिया तो पशु बन गया, है ना। ये यहाँ पर दृष्टांत समझ लो, जैसे जल कह दिया, जल आकाश में रहने वाला जल, उसका ना कोई रूप है ना कोई नाम है, वो तो जल ही जल है बस, हाँ। और नदी के संबंध के साथ, नदी के साथ संबंध बन गया तो उसका नाम हो गया गंगा जी, उसका रूप हो गया, बहुत जोर से बहता है, ऋषि के जाओ उत्तर काशी जाओ नीचे, फिर शांत हो जाती है, तो नीचे है शांति और ऊपर है अशांति, तो जल में जो शांति और अशांति हो रही है ये तो उपाधि के कारण है, जागा जागा जो है नाली, इसी प्रकार रूप भी हो जाता है, वो मिट्टी का जैसा रूप होता है ना, और गंगा जी जल का भी रूप ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ठीक इसी प्रकार जो है शरीर का संकल्प कर लिया तो शरीरधारी हो गया, वास्तविक शरीरधारी नहीं होता है ज्ञान से देखें तो। तो इसलिए आगे बोलते हैं, अंतिम मंत्र है इस बल्ली का, 15वां मंत्र है, यथोदकम शुद्धे शुद्ध मासिक्तम तादृक एव भवति एवं मुनिर्विजानत आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, नचिकेता के लिए बोल रहे, जैसा दृष्टांत बता दिया कि शुद्धे शुद्धम उदकम आसिक्तम, और जल शुद्ध है, जल शुद्ध है, तो शुद्ध जल में शुद्ध जल को डाल दिया भी तो वो भी शुद्ध हो जाता है, वो भी शुद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार शुद्ध तो परमात्मा है, तो शुद्ध परमात्मा के साथ एकीभूत होना है तो क्या करना होगा, अपने को भी शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए जितने भी साधन बताते हैं ना, ये सब चाहे कर्म हो, उपासना हो, यम हो, नियम हो, आसन, जितने भी अष्टांग योग है ना, तो जितने भी कर्म है, जितने भी उपासना है वर्ण आश्रम के द्वारा, ये सब के सब जो है ना, इसको शुद्ध करने के लिए, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, शुद्ध करने के लिए। ऐसा भी समझ लो श्रवण मनन निध्यासन भी जो है ना, ये भी शुद्ध करने के लिए, और दूसरा कुछ नहीं है। एक तो स्थूल शरीर को शुद्ध करने के लिए है, दूसरा है सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करने के लिए, और दूसरा क्या है, श्रवण मनन करोगे निध्यासन करोगे तो क्या होगा, ना कोई संशय रहेगा ना कोई विपर्य रहेगा, है ना। तो संशय विपर्य विवर्जित अंतकरण से परमात्मा का साक्षात्कार होगा, है कि नहीं। जैसे भगवती सीता दर्शन करती है भगवान राम का, उस समय ये जो नेत्र का जो पलक है ना वो स्थिर हो जाता है। देखो ये सीता माया कैसा दर्शन करती है कि उन्मेष निमेष विवर्जित नयनों से देखती है, जैसे भगवती सीता। इस प्रकार हमारा मन भी कैसा होना चाहिए, संशय विपर्य विवर्जित मन होना चाहिए, तब तो साक्षात्कार होगा। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि जो मनन कर लिया, मनन कर लिया मुनि, मननशील जो मुनि है, भगवान वासुदेव यहाँ पर लिखते हैं जो मननशील कर लिया ना, परमात्मा का ही मनन करता है, संसार का मनन नहीं करता है। तो परमात्मा का मनन कर लिया तो ये जो अपना अंतकरण है एकदम शुद्ध हो गया। अरे मंदिर में जाएंगे हम, अथवा कोई मान लीजिए दिव्य महापुरुष है, शुद्ध महापुरुष है, उसका दर्शन करना हो तो अपने को भी शुद्ध होकर के जाना पड़ेगा ना, है ना। इसमें अगर परमात्मा की उपासना करनी है ना, परमात्मा के जो है मंदिर में जाना हो तो अपने को भी शुद्ध होकर जाना पड़ेगा, और भूत प्रेत की पूजा करने के लिए शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। वहां तो मलिन होने पर भी चलता है भूत प्रेत की यदि उपासना करनी हो, लेकिन महादेव की भगवान कृष्ण की उपासना करनी हो तो आपको शुद्ध होना पड़ेगा ना, सात्विक ना, ये सात्विक है। ये बोल दिया देखो, तो शुद्ध जल जब गिर जाता है शुद्ध जल में, तो वो भी जो गिरा हुआ जल भी शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार हम जो अशुद्ध हो गए ना, क्षेत्र के साथ शरीर के साथ संबंध बना करके हम अशुद्ध हो गए, है ना। तो अशुद्ध हो गए तो अशुद्ध का एकत्व शुद्ध परमात्मा के साथ नहीं होगा, इसलिए आगे का जो है ना, आगे का वो शुद्धि के लिए बताएंगे, द्वितीय वल्ली जो है शुद्धि के लिए, है ना। इसलिए पीछे नहीं, भगवान भाष्य भगवान श्री कृष्ण वहां पर कहते हैं कि क्षेत्रज्ञम चात्माम विद्धि सर्व क्षेत्र से भारत, लेकिन तुमने जो क्षेत्र के साथ संबंध बना लिया ना, अब तुम भी क्षेत्र की तरह हो गए, है ना। शरीर के साथ संबंध बना लिया तो तुम शरीर की तरह हो गए, इसलिए तुम क्या बनो, क्षेत्रज्ञ बन जाओ तुम। तो क्षेत्रज्ञ बन जाओगे तो क्षेत्रज्ञ के साथ एकत्र होगा, भगवान तो बोल दे मैं क्षेत्रज्ञ तो मैं ही हूं, इसलिए मेरे साथ तुम जो एकत्र हो गए तो इसको कोई हटा नहीं सकता, देखो, है ना। इसी प्रकार बाहर में हमेशा वो संघर्ष है, पराच कामन अनुजंति बाल, है ना। बाहर की पूजा के लिए संघर्ष करना पड़ता है ना, अरे ये मंदिर में दर्शन करोगे तो लाइन लगाना पड़ता है, है ना। आज तिरुपति में जाओगे तो कहना क्या है, हाँ। तो बाहर का दर्शन हो गया ना वो मंदिर में जो भगवान का दर्शन है बाहर का दर्शन है, तो बाहर के भजन में बाहर की उपासना में संघर्ष ही है देखो, और भोग में तो कहना क्या है, लेकिन अंदर का भोग यदि हो उसमें कोई संघर्ष नहीं, कहां संघर्ष होता है ये परमानंद का यदि भोग करना है तो कोई संघर्ष नहीं है, देखो। तो प्रतिफलित परमानंद का भोग करना है सुषुप्ति में तो कहां संघर्ष है, कुछ भी नहीं, ना चक्षु की आवश्यकता है ना मन की आवश्यकता है। इस प्रकार असली आनंद जो है प्रतिफलन नहीं, तो असली आनंद के बारे में कहना क्या है, क्या मुक्ति न्याय हो गया ना। इसी प्रकार जो है पूजा में भी ऐसा है, इसलिए बाहर का जो बाहर की जो मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है ना, उसमें उपासना के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पुष्प लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फिर लाइन लगाओ। लेकिन परमात्मा जो अंदर बैठा है ना, उसकी उपासना के लिए कोई संघर्ष नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, है ना। इसी प्रकार ज्ञान में भी समझना है, ज्ञान में समझना, लेकिन इतना करना पड़ेगा कि तुमको जो है ना क्षेत्र कैसा जो संबंध है, उस संबंध को छोड़ो। तुम क्षेत्र न बनकर क्या बनो? क्षेत्रज्ञ बनो। ये पहले करना पड़ता है ज्ञान की परंपरा में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का उपदेश कहां से किया? 13वां अध्याय से किया। ध्यान में रखो, 6 अध्याय में तो भाई कर्म का प्रतिपादन कर दिया मुख्य रूप से, बाकी आगे 6 अध्याय में उपासना का कर दिया। और कर्म और उपासना यदि किए हो तब तो तुम अधिकारी बनोगे किस अध्याय से? 13वां अध्याय से। हो गया कि नहीं? आज जिसने कर्म नहीं किया है और जिसने उपासना नहीं किया है, ब्रह्म का व्याख्यान तो कर सकता है। हो गया ना भाई? ब्रह्म वादी तो हो सकता है ना, ब्रह्म वादी मतलब ब्रह्म का व्याख्यान तो कर सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता है। सच्ची बात है कि नहीं? सच्ची बात को स्वीकार करना चाहिए, है ना। कर्म उपासना यदि नहीं किया हो तो ब्रह्म वादी तो बन सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता है। है ना? तो क्षेत्र के साथ संबंध को यदि नहीं हटाया हो तो क्षेत्रज्ञ का तो व्याख्यान कर सकता, लेकिन क्षेत्रज्ञ नहीं हो सकता, है ना। इसलिए क्षेत्र के साथ जो तुम्हारा संबंध बन गया ना, उस संबंध को हटाओ, तुम क्या बन जाओगे? क्षेत्रज्ञ बन जाओगे। और क्षेत्रज्ञ बन जाओगे, परमात्मा तो क्षेत्रज्ञ है ही, है ना। इसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं, देखो, एवं मुनेर विजानत आत्मा भवति गौतम। इस प्रकार आत्मा भी हो जाएगा, है ना। तो अंतकरण आदि को शुद्ध कर दिया तो शुद्ध परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए सब छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने सुंदर विचार किए हैं, बहुत ही सुंदर लिखे हैं, इसलिए मैं इसका बोल रहा हूँ। तो भगवान भाष्यकर यहाँ पर लिखते हैं, जो मनन कर लिया, अपने अंतकरण को शुद्ध कर लिया है, उस परमात्मा के साथ एकत्र हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए साधक को? तो भगवान भाष्यकर कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो कहते हैं, कु तार्किक भेद दृष्टिम नास्तिक कु दृष्टिम च उज्जित्वा। इसको छोड़ना पड़ता है, दृष्टि को छोड़ो तुम। कौन सी दृष्टि आ गई है? तो कहते हैं कुतार्किक भेद दृष्टि, है ना। तर्क तो चाहिए मन को शांत करने के लिए ना, मन के संशय भ्रांति को शांत करने तर्क तो चाहिए जरूर, लेकिन कुतर्क नहीं चाहिए, है ना। ये सब भेद दृष्टि वालों की, भेद दृष्टि वालों का तर्क कैसा है? कुतर्क होता है, केवल अपनी बुद्धि मात्र से तर्क करते हैं। शास्त्रीय अनुकूल तर्क को कहते हैं तर्क, ये समझ लो, और प्रतिकूल तर्क को बोलेंगे कुतर्क। समझ में ना? इसलिए कुतर्क के द्वारा तुमको परोक्ष ज्ञान भी नहीं हो सकता, और परोक्ष ज्ञान तो बहुत दूर है। नैसा तर्केण मतिर आपने या तर्क कुतर्क, ये कुतर्क के द्वारा परमात्मा का परोक्ष ज्ञान भी तुमको नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान भाष्यकार लिखते हैं, देखो, कुतार्किक भेद दृष्टि। देखो, कुतार्किक अपनी बुद्धि से जो तर्क करते हैं, ऐसे जो कुतर्क की दृष्टि होती है, कि उसके शरण में जाओगे तो तुम्हारी दृष्टि भी कैसी हो जाएगी? कुतर्क दृष्टि हो जाएगी, है ना। इसलिए भगवान भाष्यकार ने क्या लिखा है कि महापुरुष संशय, अंतिम में क्या कहा? मनुष्यत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुष संशय, अंतिम में लिखा किसको? महापुरुष संशय को अंतिम में लिखा, इसलिए अच्छे संघ के साथ करोगे तो उनका धर्म भी आ जाता है ना। इसलिए भगवान भाष्यकार लिखते हैं, देखो कुतार्किक भेद दृष्टिम, इसको छोड़ो तुम। और दूसरी एक दृष्टि होती है जो प्रतिबंध है, नास्तिक की दृष्टि। नास्तिक की दृष्टि किसकी है भाई? चार्वाक की दृष्टि है भाई, हो गया ना। माले घी खाने की इच्छा नहीं, इच्छा है और पैसा नहीं तो क्या करोगे? ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेद है कि नहीं? ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेद। अरे भी कर्जा लेकर के लाओ, पैसा लाओ और घी ले आओ देसी घी, है ना। और फिर मांगेगा, शरीर छूट जाएगा तो किसको मांगेगा? शरीर तो छूट जाएगा और मांगेगा किसको? शरीर ही आत्मा है ना। तो ये जो दृष्टि है ना, नास्तिक की दृष्टि, नास्तिक की दृष्टि। तो ये कुतर्क भेद दृष्टि को छोड़ो, नास्तिक दृष्टि को छोड़ो, फिर किसके शरण में जाना है? शास्त्र के शरण में जाना है ना भाई। शास्त्र के शरण में क्यों जाएंगे? क्योंकि वास्तविक हितेशी तो शास्त्र ही है ना। इसलिए बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये शास्त्र कैसा है बोलते, मातृ पितृ सहस्रभ्योपि हितेषिणा। हमारी श्रुति जो है ना, हमारा शास्त्र कैसा है, इसे हजार गुना भी, हजार गुना भी, किसकी अपेक्षा हजार गुना? मातृ पितृ, माता पिता से भी हजार गुना हितेशी है कौन? देखो शास्त्र, ये भगवान भाष्यकर बोल रहे हैं, है ना। तो मातृ पितृ सहस्र, माता पिता क्यों लिया भाई? माता पिता कैसे भी हो, कभी भी अमंगल चाहेंगे नहीं। ये माता पिता का नाम लिया, दूसरे का नाम नहीं लिया है। तो माता पिता जब अमंगल नहीं चाहते हैं और इससे हजार गुना बोल दिया शास्त्र को, तो फिर उसके बारे में फिर कहना कि ये मुक्ति न्याय हो गए, है ना। तो माता पिता से हजार गुना भी, हजार गुना भी कौन हो गए? शास्त्र हितेशी है, शास्त्र श्रुति। इसलिए श्रुति बोलती है कि परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए और किसी के शरण में नहीं जाना चाहिए। इसलिए वेदेन उपदिष्टम, ऐसा हमारा भेद है, वेद वेद। तो वेद के द्वारा जो उपदेश किया गया आचार्य के मुख से, क्या? आत्मिकत्व दर्शनम, परमात्मा का साक्षात्कार आत्म रूप से हो, है ना। इसलिए उसका शरण जाना चाहिए। लेकिन क्या ध्यान में ध्यान रखना चाहिए? बोलते हैं भगवान वासुदेव, शांत दर्पेर आदरणीयम, है ना। शांत दर्पे मतलब, दर्प मतलब अहंकार होता है, अहंकार जो होता है ना, अभिमान जो होता है, इस अभिमान को तुम सब छोड़ दो, है ना। मन को बिल्कुल सरल बनाओ, इतना आसान नहीं होता है, है ना। इसलिए कुछ लोग आते हैं भी, हमको भी स्वामी जी कुछ आता है, हम भी इतने दिन से सुना है, है ना, हमको भी कुछ, इसको बोलते, इसलिए भगवान वासुदेव बोलते शांत दर्प ही, शांत दर्प यशमान, जिस साधक के अंतकरण से दर्प अभिमान सब निकल गया हो। और दर्प अभिमान कई प्रकार का होता है, किसी को जाति का हो जाएगा, किसी को धन का हो जाएगा, किसी को बुद्धि का हो जाएगा, किसी को शास्त्र ज्ञान का भी हो जाएगा। इसलिए सनत कुमार के पास जब नाराज जी जाते हैं, तो वहां पर आनंद जी महाराज बहुत सुंदर विचार किया है, नारद जी को इसलिए उनको ज्ञान हुआ कि उनके अंतकरण में किसी प्रकार का अभिमान नहीं था। देखो इससे बड़ा कौन भक्त होंगे नारद जी से बड़ा, फिर भक्ति का अभिमान नहीं है। सारे शास्त्र को पढ़ लिया, हाँ, सब गिना दिया वहां पर, भूत विद्या नक्षत्र विद्या, उसका अभिमान नहीं है। देखो, और किसके पुत्र थे नारद जी? उसका भी अभिमान नहीं है, मैं उसका पुत्र हूं। इसलिए कभी कभी शिष्य को हो जाता है, हम अमुक महंत के शिष्य है, ये भी अभिमान हो जाते हैं। ये अभिमान का काम यहाँ पर नहीं होता है। तो ज्ञान मार्ग में आना हो, अथवा शुद्ध भक्ति में भी ऐसा है, तो शुद्ध भक्ति में जैसे अभिमाने का कोई काम नहीं होता है, इसी प्रकार ज्ञान को यदि प्राप्त करना हो तो किसी प्रकार का अहिमान नहीं होना चाहिए, समस्त अहिमान को छोड़ करके उसका उसके शरण में ही जाना चाहिए, परमात्मा के शरण में जाना चाहिए और साक्षात्कार करना चाहिए। बस विचार इतने में रखते हैं और ये बलि भी पूरी हो गई, कल से दूसरी बलि चलेगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की।